सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस चातर सत्संग सभा में उपस्थित मेरी ही आत्म स्वरूप से विद्यमान भक्त की माताओं व सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कई सालों से हम लोग भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ का प्रवचन सुन रहे हैं जिसका नाम है प्रबोध सुधाकर। प्रबोध एक बोध होता है, बोध माने हुआ ज्ञान। ज्ञान तो हम सबको है नहीं है, सब जानते हैं एक काम करना चाहिए यह काम नहीं करना चाहिए। हम हैं क्या इसका भी हमें ज्ञान है, क्योंकि इतनी सालों से हम कथा सुन रहे हैं इसका हमें ज्ञान तो हो ही गया कि हम हैं क्या। इन वह ज्ञान हमारे अनुभव में नहीं उतर रहा है। सही बताएं, आ रहा है? वह ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा है। तो वह ज्ञान अनुभव में आ जाए उसी का नाम है प्रबोध। प्रबोध माने ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान जो हमारे जीवन में उतर जाए, व्यवहार में उतर जाए। तो अनुभव से युक्त ज्ञान जो होता है उसका नाम क्या है? प्रबोध। वही सबसे बड़ा अमृत है। सुधा माने क्या हुआ? अमृत है। वही सबसे बड़ा अमृत है। अमृत माने जैसे हम अपने आप को आत्म रूप से जानेंगे, जैसे हम अपने आप को क्या जानेंगे, आत्म रूप से जानेंगे, उसी क्षण हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो उसी का नाम है सुधा का हमने पान कर लिया। अमृत का हमने क्या किया है? पान कर लिया है। तो उसी अमृत का ये आकर है। आकर माने खजाना है। आकर माने क्या हुआ? खजाना है। तो वह ज्ञान युक्तियों से हमारे जीवन में उतरे, इसलिए हम कई तरह की युक्तियों के द्वारा अपनी व्यापकता, अपनी असंगता, अपनी ब्रह्म रूपता, अपनी आनंद रूपता का बोध यह ग्रंथ कराता है। प्रारंभ में देखा गया था कि जीवन में सबसे साधना के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। पहले बताया था वैराग्य, बोध और भक्ति या उपरामता, जगत के प्रति उपरामता। वैराग्य, बोध और भक्ति, ये तीन ही चीज चाहिए। वैराग्य की प्राप्ति का साधन क्या है, ये भी आप लोग जान गए थे। क्या है? जिस जिस विषय में हमारी आसक्ति होवे उस विषय में थोड़ा सा दोष दर्शन करना अथवा यथार्थ चिंतन करना। यथार्थ, एक्चुअल, एक्चुअल में हो जाएगा। जैसे रस्सी में जो सर्प दिख रहा है तो जो सर्प दिख रहा है वो भ्रांति है। जो सर्प दिख रहा हो क्या है? भ्रांति है। असली में क्या है? सर्प ही, वो रस्सी ही है। तो रस्सी देखने के बाद जो हमने सर्प का अनुभव किया था, वह सर्प से जो डर था वह डर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे संसार के विषयों में कहीं हम क्या देखते हैं? सुख देखते हैं, संसार के विषयों में कहीं हम क्या देखते हैं, दुख देखते हैं, तो जहां हम सुख देखते हैं उससे हमें राग होता है, और जहां हम दुख देखते हैं उससे हमारा क्या होता है, द्वेष हो जाता है। तो ये पता चल जाए कि संसार के विषयों में जो सुख की कल्पना है, मतलब सुख दिखता है या दुख दिखता है, वह दोनों कल्पना ही है। दोनों क्या है भाई, सुख क्या है बताओ, सुख भी मिथ्या है। संसार में जो सुख है सुख जैसा दिखता है, लेकिन सुख है क्या? ऐसे संसार में जो दुख है ना, वह दुख जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में दुख है ही नहीं। हम लोग कहते हैं आप अपनी मन की एक मापदंड बनाए हो, क्राइटेरिया, एक मन का क्या है, मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार घटना घटित हो गई तो आप अपने आप क्या मान लेते हो, सुखी। और उस मन के मापदंड को हटा दो, उसके अनुसार घटना न घटित होवे तो आप क्या हो जाते हो, दुखी। अब मन का कोई मापदंड ही न होवे तो न आप सुखी हो न आप क्या हो, दुखी हो। अब सुख और दुख दोनों के क्या हो जाओगे, पार चले जाओगे। तो वैराग्य का दो साधन है। पहला साधन क्या है, विषयों में दोष दर्शन। लेकिन ध्यान देना, इतना दोष न देख लेना कि उससे द्वेष हो जाए, भी है बड़ी मुश्किल। इतना दोष न देखो क्या हो जाए, उससे द्वेष हो जाए, भी ध्यान देना। इसलिए वहां बताया गया है कि यथार्थ दर्शन कर लो। जिस वस्तु में हमें राग अथवा द्वेष लगता है उस वस्तु का वास्तविकता में एक्चुअल चिंतन कर लो तो न राग रहेगा न क्या रहेगा, द्वेष रहेगा। ठीक है, हमें अरे जीवन में वैराग्य आ गया है, हमारे जीवन में वैराग्य आ गया है, इसकी पहचान कैसे होवे, इसका स्वरूप क्या है, बोलो भाई। विषयों में वैराग्य आ गया है, इसकी पहचान क्या है, जिहासा, उसको त्याग करने की इच्छा हो जाए। क्या हो जाए, जिहासा। जिहासा माने उसको त्याग करने की क्या हो जाए, इच्छा हो जाए। फिर उसका फल क्या है, आपके भीतर जो दीनता है ना, उस दीनता का अभाव हो जाएगा। हम संसार के जिस विषय भोग के लिए प्लीज प्लीज दीन बने रहते नहीं ना, यदि हमारे अंदर भोग की वृत्ति न होए उस विषय के लिए तो हम क्यों दीन बनेंगे। रावण दीन बनता है किसके सामने, सीता के सामने जाकर के। इतना बड़ा बलवान व्यक्ति दीन हो जाता है किसके सामने जाकर के, सीता के सामने। क्यों, क्योंकि सीता में उसकी महत बुद्धि है, भोग बुद्धि है, इसलिए दीन बनता है। यदि हमारे अंदर भोग बुद्धि न ही रहे विषयों में तो हम कभी दीन बनेंगे क्या, तो हमारे भीतर दीनता का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। ये उसका क्या है, फल है। बैराग का क्या है, फल है। वही चाह गई चिंता मिटी मनवा बे परवाह, हमको तो हमें कछु नहीं चाहिए, हम तो हैं। अगर सहनशाह बन जाओगे तो फिर बताओ क्यों दीन बनोगे। हमें विषय भोगी आपको दीन बनाते हैं। यदि विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाए ना, तो हमारे भीतर की दीनता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति आ जाए फिर हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ऐसी स्थिति आवे फिर हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान का साधन क्या है, बोलो भाई। ज्ञान का साधन, ज्ञान कैसे मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। ज्ञान के लिए तो बहुत चीजें बताई गई। एक तो मुख्य आप जानते हो, श्रवण मनन निध्यासन, ये ज्ञान के साधन है। कौन कौन, श्रवण मनन और निधिध्यासन। और भी बहुत साधन बताए गए हैं ज्ञान के। एक ग्रंथ है, आप लोगों ने सुना होगा, त्रिपुरा रहस्य। एकाध दो तो शायद उमा बहन ने मगा के पढ़ा भी होगा, पढ़ा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन मगाया तो है पक्का, थोड़ा पढ़ाया था लेकिन मगाया। उसमें 21वें अध्याय में वहां उस ग्रंथ के वक्ता हैं दत्तात्रेय। त्रिपुरा रहस्य के वक्ता कौन है, दत्तात्रेय। अश्रोता कौन है, सुनने वाले कौन है, पढ़ा है ना, कौन श्रोता है बताओ, परशुराम। कौन सोता है, परशुराम। सोच लेना, परशुराम जैसा कर्मठ व्यक्ति जिसने समाज के कल्याण के लिए समाज में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 21 बार छतियों को मार मार करके खूनों से तालाब भर दिया, सारी पृथ्वी का उन्होंने दान दे दिया कश्यप ऋषि को, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं आती है। मन में शांति नहीं आती किसको? परशुराम जी को। राम से हार भी जाते हैं, देखा ही है, जब सीता का वो धनुष यज्ञ करके वापस धनुष टूट के वापस आ रहे थे तो राम से हार जाते, बहुत दुखी होते हैं। तो उसमें वे जाते हैं, एक ऋषि हैं उनके पास, फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का बड़ा उपदेश देते हैं, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान समझ में आया नहीं। फिर उन्होंने भेजा इनके पास, दत्तात्रेय के पास जाओ, ये 12 वर्ष उपासना करने के बाद, देवी की उपासना करने के बाद फिर वापस आते हैं दत्तात्रेय के पास। तो उसमें जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश का नाम क्या है? त्रिपुरा रहस्य। उसमें पूरे 24 अध्याय हैं, 24 में 21वें में चर्चा है, ज्ञान के बहुत साधन बताए। आपने भी ज्ञान के कई साधन सुने होंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी तो ना पहली योग्यता, वहां क्या बताई गीता जी में, जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा साधन आपने बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। अब लेकिन सत्संग भी क्या है, बिनु हरि कृपा सुलभ ना सोई, तो हरि की कृपा भी चाहिए, क्या चाहिए? तो श्रद्धा भी चाहिए, क्या चाहिए? और वैराग्य भी चाहिए। तीसरा, भगवान की कृपा भी चाहिए। अब भगवान की कृपा तब कब मिलेगी बोलो भाई? जब हम भगवान के परायण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगवानाभिमुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईश्वराभिमुख हो जाएंगे। ईश्वर की तरफ हमारी दृष्टि हो जाएगी। अभी हमारी दृष्टि किसकी तरफ है? संसार की तरफ है, ध्यान देना। भगवान के मंदिर में भी हैं तो भी हमारी दृष्टि कहाँ है? संसार में। देखो कईयों को देखते हैं, जूता देखते रहते हैं, कईयों को देखते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, हर व्यक्ति अपना अपना देखता रहता है। अभी हम ईश्वराभिमुख नहीं है, अभी हम भगवान के पास जाते भी हैं, मांगते भी हैं, तो क्या मांगते हैं बताओ? संसारी मांगते हैं, धन दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, और क्या मांगते हैं? लेकिन हम भगवान अभिमुख नहीं हो रहे हैं, ईश्वराभिमुख नहीं हो रहे हैं, तो हम ईश्वर की परायण बन जाएं तो स्वाभाविक हमें क्या हो जाएगा? ज्ञान की उपलब्धि होगी। ईश्वराभिमुख होंगे तो ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो विवेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ईश्वराभिमुख कब होंगे? जब हमें ईश्वर पर श्रद्धा होगी, ध्यान देना। ईश्वराभिमुख भी कब होंगे? जब ईश्वर पे हमारी क्या होगी? अभी तो हमारी श्रद्धा किस पे है? संसार पे है, विश्वास भगवान पे कहाँ है? अभी हमारा विश्वास किस पे है? पत्नी पे विश्वास है, पुत्र पे विश्वास है, धन पे विश्वास है, तो हम इसी के अभिमुख हैं। हम जितना इंतजार, जितनी प्रतीक्षा हमारी संसार की है, उतनी प्रतीक्षा क्या भगवान की हो रही क्या? क्योंकि हमारी भगवान के प्रति भी क्या है? श्रद्धा ही नहीं बनी है। अब भगवान पे श्रद्धा कब पैदा होगी? ये बड़ा मुश्किल काम है। जब भगवान की महत्ता हमारी बुद्धि में बैठेगी, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड जब तक हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, तब तक उसके ऊपर श्रद्धा। अभी तो हमारी इम्पोर्टेंस संसार के विषयों के प्रति है, इसलिए हम संसार के विषयों की भक्ति करते हैं, उसी पे श्रद्धा करते हैं, उसी को हम पाने के लिए क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अभी हमारी क्या महत्व बुद्धि, इम्पोर्टेंस उस परमेश्वर पे नहीं हुई है। तो सबसे ये सत्संग और कुछ नहीं बताते हैं, सत्संग यही बताते हैं कि ईश्वर ही श्रेष्ठ है, ईश्वर ही सबका अधिष्ठान है, ईश्वर ही सबका मूल कारण है। वह है तो सब है, वह नहीं तो कुछ नहीं। जितने भी वस्त्र हैं, उन वस्त्रों का मूल कारण कौन है? सूत। सूत है तो टोपी भी है, मोजा भी है, कमीज भी है, पायजामा भी है, और सूत नहीं तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। यदि वह सत्ता है, आत्मसत्ता मौजूद है, समुद्र है तो हजारे तरंगे, फेन, बुलबुले सब कुछ पैदा हो जाएंगे, और जल ही न हो तो क्या होगा? इसलिए वो ईश्वर की सत्ता है, सदा जगत दिख जाएगा। ईश्वर ही न होवे तो जगत, भाई देखो, आत्मसत्ता हो तो शरीर हंसता, खेलता, बोलता, देखता, सुनता सब है, लेकिन वो सत्ता यदि शरीर में विशेष रूप से न मौजूद होवे, तो आंख खुली है तो खुली है, जीभ निकली है तो निकली है, ये भी अंदर कर लूं या बाहर कर लूं ये भी बोध होता नहीं है। तो ज्ञान के कई साधन बताए गए हैं। अब जो व्यक्ति जहां होवे वहां से अपना चैनल शुरू कर दे। भाई देखो बताए ना, ईश्वर की महत बुद्धि, पहला ईश्वर की महत बुद्धि। महत बुद्धि से क्या पैदा होगी? श्रद्धा पैदा होगी। क्या पैदा होगी? श्रद्धा। जब श्रद्धा पैदा होगी तो हम क्या हो जाएंगे? ईश्वर परायण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईश्वर परायण माने ईश्वराभिमुख होंगे। क्या हो जाएंगे? ईश्वराभिमुख। ईश्वराभिमुख होंगे तो हमें क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। सत्संग मिलेगा, इसके बाद क्या पैदा होगा? वैराग्य पैदा होगा। इसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब इसके एक चैनल है। ये सब क्या है? एक एक क्रम से हम चैनल से चलते हैं। तो क्या पहला चाहिए बोलो? ईश्वर की महत बुद्धि। उससे क्या पैदा होगा? जिसकी महत बुद्धि बैठेगी उसी के प्रति हमारी क्या होगी? श्रद्धा होगी। ध्यान देना, पक्का विश्वास कर लेना, हम बहुत बड़े आदमी हैं। जिस दिन हमारी बड़ेपन को जानोगे तब सारे लोग मेरे पास आओगे, और जिस दिन हमारे बड़ेपन को नहीं जानोगे, रास्ते हमारे विषय में आप कुछ न जानो, हम आपके घर में भिक्षा लेने चले गए, ए बाबा हट, पता नहीं मांगने के लिए आ जाते हैं, कितना तिरस्कार कर दोगे, अपमान कर दोगे, नहीं कर दोगे, सही बताओ, कितने आते हैं। और जब आप जान जाओगे तो अरे आइए महाराज जी, आपने बड़ी कृपा किया, आप आए भोजन के लिए, आप बैठिए, आपके लिए क्या बनाए, क्या न खिलाए, क्या सेवा हो जाएगी बताओ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ईश्वर के प्रति हमारी क्या हो? महत बुद्धि। उसको हम जाने, वो है क्या। फिर जानने के बाद क्या हो जाएगी? श्रद्धा उसके ऊपर पैदा होगी। और जब श्रद्धा उसके ऊपर पैदा हो जाएगी तो हम 24 घंटे उसी का चिंतन करेंगे। इसका नाम है ईश्वर अभिमुख होना, ईश्वर परायण होना। जिसका हम हमेशा चिंतन करते हैं उसका नाम क्या है? ईश्वराभिमुख होना, ईश्वर का चिंतन करना। जब ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर की कृपा बरसेगी। क्या होगी भाई? स्वाभाविक है, हमारे पास क्या है? हम अपने स्वरूप को किसके सामने व्यक्त करेंगे बताओ? आप हमारी जो कोई सेवा करेगा, यही तो होगा ना, जो हमारा चिंतन करेगा, हमारे पे विश्वास करेगा, हमें समय देगा, तो हम हमारे पास क्या है, हम कैसे रहते हैं, सब कुछ है। उसके सामने रखा जाए नहीं जाए? तो ईश्वर के अभिमुख जब होंगे तो ईश्वर की कृपा होगी, और ईश्वर जब कृपा करेगा ना तो अपना स्वरूप आपके सामने प्रकट कर देगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर की जब कृपा होगी तो क्या करेगा? अपना स्वरूप आपके सामने क्या हो जाएगा? प्रकट कर देगा। वो आता नहीं है कठोपनिषद में, जो व्यक्ति उसके अभिमुख होता है, ठीक है ना, यम एव एष ब्रूंगते, वह उसी का ही चुनाव करता है जो व्यक्ति उसके अभिमुख हो जाता है। उस ईश्वर के अभिमुख हो जाओ तो ईश्वर क्या करेगा? आपका चुनाव कर लेगा। चुनाव करने का मतलब क्या हो जाएगा? आपके सामने अपने स्वरूप को क्या करेगा? अभी भी भगवान आपके सामने प्रकट है, लेकिन अपना एक्चुअल स्वरूप नहीं दिखा रहा है, आपका आपको माइक स्वरूप दिखा रहा है। कौन सा स्वरूप? माइक। माइक माने माया से पैदा हुआ जो स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम क्या है? माइक स्वरूप। और उस माइक स्वरूप में हम दौड़ लगाइयां चल रही है। कोई कहता मैं कृष्ण का भक्त हूं, कोई कहता मैं राम का भक्त हूं, कोई कहता मैं शिव का भक्त हूं, कोई कहता मैं साईं बाबा का भक्त हूं, कोई कहता है किसी का भक्त हूं। ध्यान देना, नाम रूप की सारी लड़ाई चल रही नहीं चल रही बताओ? हमने देखा है, वहां जाओ वृंदावन में तो क्या चलेगा? राधे राधे ओधा, वहां ओम नमः शिवाय बोलो, नर्मदे हर बोलो, तो कोई नहीं बोलने वाला है, आंख ऐसे दिखाएगा, हो सकता है। और वहां जाओ अयोध्या में तो क्या चलेगा? क्यों भाई? सीताराम। क्या चलेगा? सीताराम या राम राम। वहां राधे राधे बोल दो तो तुम्हें ऐसे आंख दिखाएंगे, सही बता रहा है। वहां कहीं जाओ तो नर्मदे हर, यहाँ क्या जय, क्या गुजरात में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो वहां भरूच नहीं, वहां जो है वो मंदिर रंगछोक नहीं भाई, उस नर्मदे हर, और वहां एक और है नहीं, जो पहाड़ के ऊपर है, शंकर जी का गिरिराज, नहीं गिरिराज नहीं है पहाड़ के ऊपर भाई, हाँ हाँ गिरनार पर्वत पे है जो, शंकर जी का ना गिरनार पे है, दत्तात्रेय का है ना। हाँ चलो जो भी है, हर जगह के अपने अपने क्या है कोड वर्ड है, इन्हीं उपाधियों के कारण क्या चल रही है, लड़ाइयां चल रही है। नहीं नहीं, कोई ओम नमो नारायण, कोई स्वामी नारायण, कोई नारायण, और सब अपने एक एक क्या बांटे हुए हैं, संप्रदाय बांटे हुए हैं। वो तुम वो नाम नहीं लोगे, वो नाम लोगे, वो नाम नहीं लोगे, वो नाम लोगे। और भगवान कहते हैं बच्चे क्यों लड़ाई कर रहे हैं झूठे नाम रूप के लिए, जबकि दुनिया के सारे नाम रूप मेरे ही हैं। तुम किसी का भी नाम ले रहे हो, नाम किसका हो रहा है, परमात्मा का है। लेकिन हम लोग किस रूप को जानते हैं, माइक स्वरूप को, भगवान के माया से उत्पन्न हुआ जो स्वरूप है, जो उनका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडा केसर सर्वभूताशय स्थित है। एक भूत में नहीं, एक प्राणी में नहीं, संसार के सब प्राणियों में जिसकी सत्ता विद्यमान है वह आत्मा, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही सब कुछ है, वही आत्मा है। लेकिन हम उस स्वरूप को जान नहीं पाते, बस लड़ाई चल रही है माइक स्वरूप को जानने के बाद। और जब भगवान अपने स्वरूप को आपके सामने प्रकट कर देंगे तो जगत क्या हो जाएगा भाई, जब सूत का ज्ञान हो जाएगा असली में, तो कुर्ता पैजामा और टोपी और पगड़ी की लड़ाई क्या हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। ध्यान देना, वो व्यवहार के लिए हम कल्पना तो करेंगे, व्यवहार तो उनके साथ चलाएंगे, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी, सूत में ही बनी रहेगी। तो हम संसार के सत के साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन व्यवहार करते हुए हमारी दृष्टि से परमात्मा कभी ओझल होगा ही नहीं। तो इसका नाम क्या है, वैराग्य पैदा हो जाएगा। किससे, संसार के विषय भोगों से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य जैसे ही हो गया संसार से, तो आपकी जगत के प्रति उपरामता हो जाएगी, और उपरामता होते ही आप 24 घंटे उसी परमात्मा में क्या करोगे, रमण करेंगे। लेकिन जब तक उस परमात्मा में हमारा स्वाभाविक रमण नहीं होगा ना, तब तक हमें कुछ मिलने वाला है ही नहीं। चलो, इस तरह से ज्ञान के कई साधन बताए गए, इसलिए कोई साधन कम है नहीं कह सकते हैं। ईश्वर की महत्व बुद्धि भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, क्यों भाई ये सब चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जी, इन साधनों में से सबसे श्रेष्ठ और बढ़िया साधन कौन सा है ये बताया, सबसे श्रेष्ठ और बढ़िया साधन क्या है। तो वहां बताया, कहां पे, त्रिपुरा रहस्य में दत्तात्रेय महाराज ने किसको, परशुराम जी को बताया कि सबसे बढ़िया साधन तो ईश्वराभिमुख होना। क्या होना, ईश्वराभिमुख होना, थोड़ा सा वैराग्य होना, ये भी बताया। हम सब ईश्वराभिमुख तो हैं, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी भक्ति हो रही, इतने मंदिरों में भीड़ होती जा रही है, हर साल नहीं भीड़ होती जा रही, मंदिरों के ऊपर इतने दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो बिना भगवान के अभिमुख हुए हम किसी को 10 पैसे दे नहीं सकते। दे रहे हैं तो ईश्वराभिमुख हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है। ईश्वराभिमुख होकर के हम संसार ही मांग रहे हैं। इसलिए कहीं मंदिर में जाओ, कहीं, जब से मैं यहां दरबार में आना शुरू हो गया, मेरा ये फायदा हो गया, मेरा ये फायदा हुआ, सब लोग किसको मांगने के लिए जा रहा है, बोलो भाई, संसार को मांगने के लिए किसके पास जा रहा है, परमात्मा के पास जा रहा है। तो थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। क्या क्या चाहिए, जानते ना, बहुत गंभीर चीज है। तीनों सामंजस्य चाहिए। साधना यदि एकांगी हो गई ना, तो साधना पूर्ण फल देने वाली नहीं होगी। साधना के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साधनों का भी, साधना के साथ साथ उसके साधनों का भी निरूपण होवे। तो ईश्वराभिमुख तो हो जाओ, लेकिन ईश्वराभिमुख होने के साथ साथ थोड़ा वैराग्य चाहिए और थोड़ा सत्संग चाहिए। क्या चाहिए, कई लोग देखो मंदिरों में जाते हैं, कितनी भक्ति करती हैं माताएं, नवरात्रि की पूरी उपासना करना करती नहीं करती, सावन के महीने में रोज जल चढ़ाना, लेकिन उनको सत्संग से कोई नहीं मतलब है। कहां जाएंगी, जल चढ़ा करके मंदिर चली जाएंगी, लंबी लाइन लगा लेंगी, इतना बेलपत्र चढ़ा देंगी, शिवपुराण पढ़ लेंगी, ये कर लेंगी, लेकिन सत्संग से लेना ही नहीं देना है। कई देखो आजकल भक्ति का स्वरूप है, मैंने खूब देखा, नवरात्रि में खूब भक्ति करेंगे, लेकिन सत्संग नहीं, बस मैं महाराज जी भगवान का भजन कर लेता, भक्ति कर लेता, सत्संग तो आप मेरे काम का नहीं है। सही, कईयों को मैंने देखा भक्ति भी खूब करते हैं लेकिन सत्संग नहीं है। अब भक्ति भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या चाहिए, ईश्वराभिमुख हैं लेकिन ये दोनों की कमी है, वैराग्य की कमी है। इसलिए ईश्वराभिमुख होने के साथ साथ हम क्या कहते हैं, ईश्वराभिमुख होने के साथ साथ संसार के विषयों से क्या होवे, वैराग्य होवे। नहीं, भगवान भी कहते हैं आया है भक्ति थोड़े करने आया, ले भाई क्या चाहिए तेरे के पैसा ले कर। हम लोग भी आते हैं, कोई प्रसाद इनाम आते हैं उनको दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, जा। सही बता रहा हूं, कई लोग आते हैं, हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं, हम जानते हैं आदमी किसके लिए आया है, मात्र प्रसाद के लिए आया और कोई प्रयोजन नहीं, तो उसको आते ही प्रसाद दिया हो जा भाई। ऐसे भगवान के पास भी जब आते हैं ना, भगवान भी जानते हैं तो प्रसाद के लिए आया है, मतलब संसार का किसी भोग वस्तु की कामना के लिए आया है, भगवान उसके सामने अपने स्वरूप को क्यों प्रकट करेंगे। भगवान कहते हैं ले जा भाई, संसार ही तो चाहिए ना, ले जा पत्नी पुत्र धन पद जो चाहिए तू ले जा, बस मेरा पिंड है छोड़ दे, क्या करे भगवान बेचारे। अब तो वैराग्य चाहिए, ध्यान देना, क्या भक्ति के साथ साथ क्या चाहिए, वैराग्य। और यही नहीं, भक्ति के साथ साथ क्या चाहिए, सत्संग भी चाहिए। भगवान कहते हैं लोग मेरी पूजा तो करते हैं लेकिन मेरी बात कोई मानता, भाई आप अपने बाप की आरती उतारो, पूजा करो, फूलमाला चढ़ाओ, उनकी बात एक न मानो तो पिता को खुशी होगी क्या। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, भगवान ने जो कहा है उसको भी तो मानो, तो इसका नाम क्या है, सत्संग। क्या करना है, सत्संग सुनना। अबे कितनी चीजें हो गई, तीन। अब सत्संग सुनने के बाद वहां चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंस बताई है, उस सत्संग का निरूपण दूसरे से करना, ये बहुत ऊंची चौथी चीज वहां बताई। क्या बताया गया है, सुनने के बाद जो कुछ सुना है, जो कुछ हमारी बुद्धि में आया है, उस चीज को हमें क्या करना है, दूसरों को निरूपण करना है, दूसरे को सुनाना है, दूसरे को बताना है। तो यदि बताओगे ना, तो बताते बताते आपकी बुद्धि में जो सुने हो वह मजबूत हो जाएगा। हम सीधे कहते हैं, पढ़ करके जितना ज्ञान नहीं होता है, पढ़ा करके उतना क्लियरिटी आती है। पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या करना है, दूसरे को पढ़ाना भी है। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल है महाराज जी, कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिलता है, किसको जाके पढ़ाए, घर में जाए बहू भी सुनती नहीं है, क्या करें, उनको तो अपनी दुनिया से मतलब है। तो उस अवस्था में क्या करना, न पढ़ने वाला मिले तो खुद ही स्टूडेंट बन जाना, खुद ही क्या बन जाना, विद्यार्थी बन जाना। अच्छे 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 विचार आए उनको क्या करना, लिखना शुरू कर देना। क्या करना, तो वो भी आप अब एक चीज कोई लिखना हो, कोई श्लोक ढूंढना हो, तो 10 पुस्तकों का अन्वेषण करोगे तब जाकर उसको लिख पाओगे। हम जो किताबें इधर उधर लिखते हैं, हमारे लिखने का भी प्रयोजन नहीं रहा कि हमारी चित्त की वृत्ति कम से कम संसाराभिमुख न होकर कहां बनी रहे। और कई विचार कई चिंतन उसमें उद्भूत होते हैं, तो इसको क्या किया करो, लिख लिया करो। ये भी एक क्या है, सत्संग करने का एक क्या है, तरीका है। जब कोई नहीं मिल रहा तो हम ही लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो हमारा चिंतन तो बढ़ रहा है ना, तो ये सब करने से हमारा ज्ञान क्या हो जाता है, मजबूत हो जाएगा। और जैसे ज्ञान मजबूत हो जाएगा, अपने स्वरूप के विषय में पक्का बोध हो जाएगा, वैसे आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या होंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो दुख कौन कौन से हैं, देखो ये तो एकदम महा ब्रह्म ज्ञान है, राम बांग दवाई है कि अपने आप को जान लो, अपने आप को जान लो और सारे दुखों की क्या हो जाए, निवृत्ति हो जाए। क्योंकि सारे दुख किसको आते हैं, शरीर को, मन को। और शरीर और मन से आपका तादात्म्य हट गया, आपका संबंध हट गया, तो इसका दुख हमें दुखी नहीं करेगा। जितनी मात्रा में शरीर से मन से तादात्म्य बना रहेगा, उतनी मात्रा में हम दुखी होते रहे। अच्छे बताओ, संसार में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग दुखी हैं, उनके दुखों से आपका कोई संबंध है क्या? अरे हो गया, ऐसी घटना हो जाती है। लेकिन अपना बेटा हो तो, अपनी पत्नी हो तो, अपना पति हो तो, घटना घटित हुई किसके साथ है, पत्नी के साथ है, पुत्र के साथ है, लेकिन दुखी कौन हो रहा है, मैं। क्यों, उसके साथ हमारा क्या है, तादात्म्य है, ऐसे इस शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है, इसके कारण शरीर के दुख से हम क्या हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, और शरीर के सुख से हम क्या हो जा रहे हैं, सुखी हो जा रहे हैं। इससे हमारा तादात्म्य हट जाए, संबंध हट जाए, तो इसके सुख दुख में भी आप क्या हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे, परे हट जाओगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है, एकदम क्या है, क्रेष्ट शीर्ष सबसे बढ़िया ज्ञान। लेकिन कुछ दुख के उपाय ऐसे हैं जो सामान्य चिंतन से भी दुख दूर हो सकते हैं। जैसे पहले दुख जानो, कितने दुख हैं, बोलो भाई, तीन दुख हैं, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। कितने दुख हैं, तीन ही दुख हैं। मतलब ऐसे दुख तो बहुत दुनिया भर के दुख हैं, इन सारे दुखों को तीन दुखों में अंतर्भाव कर लो। कौन कौन से दुख, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख। कितने दुख, तीन दुख हैं। पहला दुख आधि भौतिक दुख, कौन सा दुख है, भूत माने संसार के प्राणियों से जो दुख होता है उस दुख का नाम क्या है, आधि भौतिक दुख। संसार के प्राणी में बहुत कुछ आ जाते हैं, इस शरीर से अतिरिक्त जितना भी जीव हैं, सबके सब क्या है, संसार के, जैसे उसमें क्या ले लें, वो क्या, खटमल दुख देता नहीं देता है, अरे भगवान बचाए किसी की घर में खटमल हो जाए, रात भर सोने नहीं देता। मच्छर, अरे आजकल तो मच्छर भी है भगवान, इतनी जान लेने के लिए आ जाते हैं, नहीं, डेंगू और कौन कौन आ रहे हैं, ये सब मच्छर, इसमें तो इबोला चल रहा है, इबोला वायरस चल रहा, हाँ इबोला। ऐसे ही कोई सांड है, रोटी खिलाने का, गाय ने क्या किया, सींग लगा दिया, ये भी एक क्या है, सर्प है। ये तो प्राणी है, इतने ही नहीं, घर का बेटा बेटी, पति पत्नी, ये भी एक प्राणी है, ये भी आपको दुख दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हर पल आपको तंग कर रहे हैं, कौन, इस संसार का हर जीव तंग कर रहा है। अतः इस दुख से बचने का क्या उपाय है, है कोई उपाय, सुनो देखो, हम शिकायत 24 घंटे करते रहते हैं, महाराज जी पति खराब, पत्नी खराब, पड़ोसी खराब है, लेकिन बचने का उपाय तो कुछ दिखता नहीं। एक देखना, आज शिकायत करने से भी दुख दूर तो होने वाला है ही नहीं, क्या है, एक बबूल का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, क्या है, बबूल और आम है। तो बबूल के पेड़ के साथ खेलोगे, कहीं कहीं बबूल के बगीचे लगे होते हैं, हमने देखे हैं, जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, वहां लोग क्या डाल देते हैं, बबूल बबूल के पेड़ ऐसे उगा देते हैं। अब उस पेड़ में कोई व्यक्ति खेलने जाए, बताओ उसको कांटा चुभेगा कि नहीं चुभेगा, और आम के बाग में कोई बच्चे खूब खेलते हैं, कूदते हैं, इस पेड़ की डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, तो कोई खतरा रहता है क्या, नहीं रहता ना। लेकिन बबूल के पेड़ के साथ व्यवहार करेगा तो कांटा चुभेगा। तो बबूल के साथ कितना व्यवहार करते हो, सुबह सुबह जब दातून तोड़ना हो, इसे दातून अच्छी लगती है किसकी, हम लोग बचपन में तो बबूले के करते थे, लोग कहते थे नीम की बड़ी फायदेमंद होती है, लेकिन बच्चे को नीम बहुत क्या लगती थी, कड़वी, तो सबसे बढ़िया दातून किसकी लगती थी, बबूल की तोड़ खिलाते थे। लेकिन बबूल के पास जाओगे तो क्या लेके जाओगे, पहला काम डंडा, पहला काम क्या है, डंडा, और दूसरा पांव में जूता, ठीक है ना। अब बबूल के साथ उतना देर व्यवहार करोगे जितनी आवश्यकता होगी, क्यों, बबूल के साथ उतना ही व्यवहार करोगे, मुश्किल से 5 मिनट का 10 मिनट का, जब तक दातून तोड़ा छीला तब तक व्यवहार करोगे, अब बाकी उस बबूल की तरफ देखोगे भी नहीं, यही तो है ना उपाय। तो ऐसे है संसार, यह संसार झाड़ झांखर उलझ पुलझ मर जाना है, ये किसने कहा, हाँ, यह संसार झाड़ झांखर उलझ पुलझ मरी जाना है, ये संसार क्या है, झाड़ है झांखड़ है, इसमें जितना ज्यादा रमण करोगे, जितना ज्यादा व्यवहार करोगे, जितना ज्यादा इस संसार में खेलोगे, उतने ही कांटे चुभेंगे, उतने ही ज्यादा लुहलुहान होगे, पक्का जान लेना। बबूल के बगीचे में कोई खेले, रमण करे, कबड्डी खेले तो बताओ क्या होगा, बोलो। हम इस संसार में ही तो खेलते हैं और क्या करते हैं, 24 घंटे हमारा रमण खेलकूद कहां हो रहा है। 24 घंटे संसार आपको क्या करेगा, कांटा चुभाएगा ही चुभाएगा, पक्का जान लेना। इसे संसार से उतना ही व्यवहार करो जितने व्यवहार की क्या होवे, आवश्यकता होवे। यदि संसार से किसी के साथ भी ज्यादा व्यवहार किया तो व्यक्ति आपको तंग करेगा ही करेगा, पक्का जान लेना। हमने तो खुद देखा, कईयों घरों में देखा मैंने। जैसे बंबई वाले थोड़ा लोग असंग रहते हैं, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रहते, पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं रहता है, है नहीं? छोटे छोटे शहरों में क्या होता है, हमने देखा ऐसे, वो पड़ोसी आ गया तो रोटी बन के जा रही है, वहां सब्जी यहां आ रही है, यहां की सब्जी वहां जा रही है, इतना व्यवहार कर लेंगे और फिर एक दूसरे की क्या हो जाएगी, निंदा चुगली, फिर एक दूसरे से क्या हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए बंबई के लोग जानते ही नहीं है कौन पड़ोस में है, बंबई के लोग तो असंग रहते हैं ज्यादा, है नहीं? इसलिए सही बताओ, यहां लड़ाइयां भी कम है, बताऊं, माँ बेटे भाई 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 की लड़ाइयां सब कम है, क्यों? किसी से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, क्या करेंगे, लड़ाई करने के लिए भी तो वक्त चाहिए ना। किसी को यहां तक पति पत्नी भी कब मिलते हैं भगवान जाने, ड्यूटी वो भी दे रहे, वो भी ड्यूटी दे रहे, कब आए कब गए कुछ मतलब ही नहीं है, तो इसलिए लड़ाइयां कम है। तो कहने का भाव है कि संसार के साथ इतना ही व्यवहार करो जितनी आवश्यकता हो, और उसमें व्यवहार करने भी जाना तो थोड़ा सा क्या करना, तैयार रहकर जाना, एक कवच पहन के जाना कि वो आदमी के पास जा रहा हूं, जिसे हम इनके पास मांगने के लिए आए, तो तैयार होकर जाना कि पक्का मना कर देंगे, देंगे नहीं, तो उनके न मना करने समय दुख होगा नहीं। तो एक कवच पहन के जाना, एक जूता पहन के जाना, और हाथ में क्या लेके जाना, डंडा लेके जाना। हमने डंडा भी बता दिए थे, याद है, चार डंडे, यहां एक डंडा नहीं, कितने डंडे चाहिए, चार। प्रेम, पारदर्शिता, क्या चाहिए याद है ना, प्रेम, पारदर्शिता, पवित्रता, परिश्रम। तो थोड़ा सा इन संसार के दुखों से क्या करोगे, बच के रहोगे, ठीक है ना। खूब परिश्रम करोगे तो किसी का एहसान नहीं लोगे, सही है कि नहीं, बताओ। हमने यदि अपने हाथ से भोजन बना के दूसरे को खिला दिया तो मेहनत तो किया ना, तो कोई एहसान नहीं जताया, मैंने तुम्हें इतने साल खिलाया, कोई एहसान जताएगा क्या? तो परिश्रम करोगे तो कोई आपको ताना नहीं सुनाएगा, और ताना नहीं सुनाएगा तो आपको दुख भी नहीं होगा। पवित्रता रखोगे अंदर, पवित्रता रहेगी तो कोई आपके ऊपर चरित्रगत दोष का भी आक्षेप नहीं करेगा। पारदर्शिता रखोगे, आपके मोबाइल में क्या मैसेज हैं, क्या तस्वीरें हैं, तो पासवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अथवा मोबाइल या कोई चीज कहीं छूट भी गई तो आपको कोई दुख होने वाला है ही नहीं। अब दूसरा है, सारा संसार है, प्रेम अलग है, ध्यान ना, प्रेम अलग है और मोह अलग है, दोनों मंत्र समझ लेना। लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेम संसार कैसे चलेगा। प्रेम में व्यक्ति अपने को सुखी करने की अपेक्षा नहीं रहती, प्रेम में सोचता है दूसरा सुखी हो जाए, और मोह में क्या रहता है, मैं सुखी हूं दूसरे का करियर बचे अथवा बिगड़ जाए। जैसे एक माता का एक बेटा हुआ बहुत दिनों के बाद, तो उस बेटे को बाहर जाएगा तो लोग मर्डर कर डालेंगे, ये हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, उस बेटे को घर से बाहर स्कूल पढ़ने के लिए ही नहीं भेजा उस माँ ने, तो उसका नाम क्या है, मोह है, ध्यान देना, वो प्रेम नहीं है, उसने अपना सुख देखा, बेटे के करियर को नहीं देखा। और जहां प्रेम रहता है ना, जैसे गोपिकाओं ने क्या किया, भगवान से क्या किया है, प्रेम किया है, और उस प्रेम के कारण क्या किया है, हम लाख दुखी रह लें, जीवन में कष्ट उठा लें, लेकिन हे कृष्ण, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, हम तुम्हारे सुख में अपने आप क्या मानते हैं, सुखी मानते हैं, उसका नाम क्या है, तो प्रेम में अपना सुख नहीं देखा जाता है, प्रेम में किसका सुख देखा जाता है, दूसरे का सुख देखा जाता है, और आसक्ति में, मोह में किसका सुख देखा जाता है, अपना स्वार्थ देखा जाता है, दूसरा चाहे करियर बने अथवा बिगड़े, चलो जो भी है। तो एक कितने डंडे चाहिए, और एक पांचवा मैंने बता दिया प्रेमपुरी आश्रम भी है, इसको भी छोड़ना नहीं है नहीं। पांचवा डंडा क्या है? ए तो पांच डंडे लेकर जाओगे तो संसार का दुख दुखी नहीं करेगा, पक्की चीज। और थोड़ा सा इस संसार के साथ जाना, एक कवच पहन के जाना, तैयार रहना कि संसार आपको कुछ न कुछ क्या करेगा, कमेंट कसेगा, कुछ न कुछ बोलेगा, किसी को देने के पहले ही तैयार रहना कि मैं दे रहा हूं तो वापस आने वाला नहीं है, पक्का तो वापस नहीं आएगा, दुख नहीं होगा। और दोगे आशा लगाओगे कि हमें ज्यादा मिलेगा, दुगना मिलेगा, तुगना मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, तो हमेशा हर पल क्या रहोगे, किसी की सेवा करने के बाद भूल जाना, ये सब क्या है, कवच है, समझ है। ये पहन के जाओगे तो संसार का कोई दुख आपको दुखी करेगा नहीं। तो अब जान लेना संसार के साथ कितना व्यवहार करना है, जितना आवश्यकता, शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना व्यवहार करो। तो संसार थोड़ा बहुत कांटा, देखो कितनी भी सफाई से, कोई गांव का होगा वो बंदा जानता होगा, कितनी भी सफाई से बबूल की दातून तोड़ो, इन एक दो कांटे दाएं बाएं तो कहीं ना कहीं चुभ ही जाते हैं, पक्का। हमने तो तोड़े हैं ना, इसलिए मेरे को आइडिया है, शायद चिमन भाई ने नहीं तोड़ा होगा। बबूल का कांटा तोड़ोगे तो कहीं न कहीं से दातून तोड़ोगे तो एक दो कांटे कहीं न कहीं लग ही जाते हैं, चुभ ही जाएंगे, पक्का। तो संसार के साथ व्यवहार करोगे थोड़ी बहुत तो क्या आएगी, तपिश तो आएगी, लेकिन उस तपिश का उतना दुख नहीं होगा जितना दुख होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है, क्या है, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करो। इसलोक याद है, निराशिर यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कुरुवन, शारीरम केवलम कर्म कुरुवन न आपनोति किल विषम। है याद ना, शायद चौथे अध्याय का होगा। निराशिर, हम संसार में व्यवहार बहुत ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि संसार में हम मानते हैं कि सुख है, संसार के विषय में सुख की आशा को पूरी तरह से छोड़ देना, इसके नाम क्या है, निराशी। निराशा मतलब आशा से रहित तो हो जाना, किसकी आशा से रहित है, संसार के विषय में। अच्छे बताओ, नमक की डली है, नमक की डली से आशा करो कि उसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई मिश्री का मिठास आएगी। बताओ, नमक की डली दाएं से बाएं से ऊपर से तोड़ करके नीचे से पीस करके कहीं से भी देखो, मिठास आएगा क्या? बोलो भाई, कोई जरा सा भी आशा है क्या? ऐसे संसार में सुख का एक लेश मात्र भी मिलने वाला है ही नहीं। इस तरह से इस आशा का त्याग कर दो कि संसार के किसी विषय भोग में थोड़ा सा भी सुख है। कहो, नहीं महाराज जी, मेरे को तो सुख दिखता है। तो भाई, वो जो सुख दिखता है ना, वो उस विषय का नहीं सुख है, वो सुख आपका अपना सुख है। लड्डू मीठा होता है क्या? बोलो भाई, लड्डू मीठा होता है, पक्का? अरे लड्डू माने गोल गोल बनी हुई चीज का नाम क्या है, लड्डू। लड्डू नहीं मीठा होता है, चीनी मीठी होती है। लड्डू में चीनी ना डालो तो बोलो मीठा होगा? तो लड्डू मीठा है, चीनी मीठी है। तो लड्डू में जो मिठास आता है वो किसका है, चीनी का है कि लड्डू का है? तो संसार के विषयों में भी सुख लिखता है ना, वो सुख विषय का नहीं है, वो किसका है, आपका अपने ही सुख है, आत्मा का सुख है। जब विषय की प्राप्ति होती है ना, तो मन बड़ा शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो मन की एकाग्रता में सुख मिलता है। और हम समझते हैं वह सुख कहां से मिला है, उस विषय से मिला है, जबकि उस विषय से नहीं। मन अभी अशांत होवे, अब बढ़िया आपको खाना दे दिया जाए, खाने में कोई रस आएगा क्या? मन अशांत हो और संसार का कोई भोग फिल्म देखने के लिए भेज दिया जाए, बताओ तो फिल्म में कोई रस आएगा क्या? यदि मन शांत हो गया तो जानना हर विषय में आपको रस मिल जाएगा। तो विषय का रस नहीं है, रस किसका है, मन की शांति का रस है, शांत। तो निराशिर, और जब आपने संसार के विषय भोगों में सुख है इस आशा का त्याग कर दिया, तो यत चित्त, आपका चित्त क्या हो जाएगा, यत माने संयत, रुक जाएगा आपका चित्त, अब विषय का चिंतन नहीं करेगा। और चित्त से विषयों का चिंतन हट गया तो आत्मा, आत्मा माने यहां शरीर, शरीर भी आप उस विषय की दौड़ की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा भाई मन की बैसाखी पर बैठकर के ही तो शरीर दौड़ता है। यदि मन ही, अब हम मुंबई में आते हैं, हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी बहुत घूमते होंगे मुंबई में, क्या क्या मिले आपको, हीरो हीरोइन मिलते नहीं मिलते, उधर के लोग तो हीरो हीरोइन को भगवान समझते हैं ना। हम लोग कहे भाई हमें तो देखने की इच्छा नहीं होती, उनको देखे सही बताऊं, अथवा मुंबई में कहीं घूमने की भी इच्छा नहीं होती, कहां जाऊं कहां आऊं, आके कमरे में बैंड हो गया और फिर कमरे से बाहर 3 तारीख को 4 तारीख को निकल जाएंगे जहां जाना है, अन्यथा कहीं इधर उधर घूमने की कहीं इच्छा। और जिसको घूमने की इच्छा बनी रहती है वो कमरे में एक पल टिकता नहीं, कथा किया और बैग लिया और क्या किया चल दिया। हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपका चित्त यदि विक्षिप्त है या चित्त में चंचलता है तो आपको शरीर को स्थिर रखना चाहो तो शरीर स्थिर रहेगा नहीं। आपका चित्त यदि शांत हो गया तो आपका शरीर भी क्या हो जाएगा शांत, मतलब शरीर की दौड़ भाग हाय हाय क्या हो जाएगा समाप्त। त्यक्त सर्व परिग्रह, अनावश्यक जितना हमने परिग्रह किया हुआ है सारे परिग्रह क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे, सारे परिग्रह क्या हो जाएंगे छूटेंगे। महाराज जीवन कैसे चलेगा तो शरीरम केवलम कर्म कुरवन, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितना आवश्यक है उतना कर्म करता हुआ न आपनोति किल्बिषम, वह व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं करता है, पाप को प्राप्त नहीं करता। भाई देखो शरीर को खाने के लिए अनाज तो खाना पड़ेगा, अनाज में भी तो जीव है नहीं जीव है, अनाज में भी दूसरे का हिस्सा ही नहीं है। जिस अनाज को खाते हैं वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष में हो सकता है बकरी खाए भेड़ खाए पशु का घास तिनका सब है नहीं इसमें, कि हमने उस अनाज को खा लिया तो दूसरे का हिस्सा मारा कि नहीं मारा। लेकिन शरीर निर्वाह मात्र के लिए यदि हमने दूसरे का हिस्सा छीना भी तो वो पाप के भागी, लेकिन शरीर निर्वाह के अलावा यदि हमने दूसरे का हिस्सा छीना तो हमारे पाप का क्या हो जाएगा भागीदार कारण बन जाएगा। इसलिए इतना व्यवहार करो संसार में जितनी क्या हो आवश्यकता हो, अनावश्यक जितना संसार में रमण करोगे संसार में उतना ही कांटा चुभेगा। इसलिए आम के बगीचे में खेल लो चलेगा, लेकिन बबूल के बगीचे में खेलना नहीं, नहीं तो कांटा चुभेगा। तो संसार किसका बगीचा है, आम का बगीचा कौन है आपका अपना स्वरूप, उस स्वरूप में जितना डूब लो जितना आनंद ले लो, वहां कोई कंपटीशन नहीं, वहां एकदम शांत है, वहां कोई दुख नहीं है। सुषुप्ति में कोई दुख है क्या, गहरी नींद में कहीं कोई दुख दिखता है क्या, कोई अशांति दिखती है क्या, हाय इतनी ज्यादा 10 घंटे की नींद आ गई, नहीं आनी चाहिए थी बेकार आ गई, वो मजा आता है, बड़ी बढ़िया नींद आई, बड़ा सोया चैन से सोया। चलो दूसरा दुख कौन सा दुख है, आधी दैविक, दूसरा दुख कौन सा है आज दैविक, देवता के प्रकोप से, ऐसा बोलते हैं देवता के प्रकोप से जो दुख होता है उस दुख का नाम क्या है आज दैविक दुख। ज्यादा सर्दी पड़ गई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, ज्यादा बारिश हो गई, इस दुख का नाम ते देवता का प्रकोप है क्या, बोलो भाई देवता कभी प्रकोप करता ही नहीं, ये बताओ, हमें लगता है देवता का प्रकोप है, देवता तो हमेशा कृपा ही करता है, क्या करता है देवता हमेशा हमारे ऊपर क्या करता है कृपा ही करता है, हमें लगता है कोई प्रकोप कर रहा है। तो जो भी मिले उसमें ईश्वर की क्या कर दो कृपा का अनुसंधान कर लो, तो वो दुख दुख नहीं रह जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को मां थप्पड़ लगा करके, इसे आजकल थप्पड़ लगाना मना हो गया है नहीं, बड़ा नियम, पहले माताएं कितना थप्पड़ लगाती थी किसी बच्चों को, अब बच्चा तो सोचता मां नहीं मेरी दुश्मन है, मेरी डांटती रहती है, बताओ मां दुश्मन है क्या, मां से सच्चा मित्र कौन हो सकता बताओ। मां यदि थप्पड़ लगाती है, मां यदि डांटती है, तो इसमें आपका भला है कि बुरा है, तो ईश्वर हमारे सामने यदि गर्मी बहुत दे देवे, सर्दी बहुत दे देवे, बरसात बहुत दे देवे, बताओ कृपा है कि उसका जुलम है। अरे भाई गर्मी होती है तो क्या होता है भाई, پسینے بہتے ہیں. اب پسینے بہتے ہیں تو آپ کے اسکن ڈسیزز اسکن کے روگ نہیں ہوتے ہیں. شریر کے کئی مل ہے پسینے کے مادھیم سے کیا ہو جاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں. تو کرپا ہے کہ اس کا کوپ ہے. بولا بارش ہو گئی اب کر رہے ہیں تو بارش نہ ہوئے تو پانی آپ کہاں سے پیو گے بتاؤ. لیکن مہاراج جی دس دن سے بارش نہیں, وہ بارش ہی بارش ہو رہی ہے, یہ ہو رہی. بارش نہ ہوگی تو اناج کہاں سے کھاؤ گے بتاؤ. تو بارش بھی ہونا اس کی کیا ہے, اور سردی ہونا کرپا ہے کہ اکرپا ہے. سردی نہ ہو نا تو گیہوں کی فصل نہیں ہوگی, روٹی نہیں ہو سکتی ہے, یہ دھیان دینا. تو ہر روپوں میں پرماتما ہمارے اوپر کیا کرتا ہے کرپائی. اکال بھی پیدا کرتا ہے نا تو اس میں بھی بھگوان کیا کرتا ہے. ہم نے اناج کی ویلو سمجھا نہیں. ہمیں پہلے ہمیں معلوم ہے گاؤں میں جب بھوجن کرتے تھے تو بھوجن کے بعد تھالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کیا کرتے تھے, اس پانی کو پی جاتے تھے. اناج کا ایک انش بھی ویتھ کوڑے میں نہیں پھینکنا چاہیے. آج ہم لوگوں نے کتنا اناج کوڑے میں کہاں کہاں نہیں پھینک دیتے ہیں بتاؤ. تو ہم نے اناج کی قیمت سمجھ رہے ہیں کیا؟ ارے اناج کی قیمت جس دن سمجھ میں آ جائے گی نا, صحیح بتاؤں, آپ اناوشک پھینکنا بند کر دو گے, سارا سوکھا پڑنا بھی بند ہو جائے گا. پرماتما جو بھی گھٹنا ہمارے سامنے کھڑی کرتا ہے اس گھٹنا میں ہمارا کہیں نہ کہیں بھلا ہے, ہمیں کچھ کچھ سکھانا چاہتا ہے, ہمیں شکشا دینا چاہتا ہے. اس لیے ہر گھٹناؤں میں اس پرماتما کیا کرنا, کرپا کا انوسندھان کر لینا, تو وہ دکھ دکھ نہیں وہ کیا ہو جائے گا, سکھ ہو جائے گا. تانت تچھسو بھارت ہے آگما پائنو نتیا تانت تچھسو بھارت ہے. یہ آنے جانے والی گھٹنائیں ہیں, ان کو چپ چاپ کیا کر لینا چاہیے, سہ لینا چاہیے. تیسرا دکھ ہے کون سا دکھ ہے, آدھیاتمک دکھ. آدھیاتمک من کیا ہوا, شریر کے کارن جو دکھ ہوتا ہے یا من کے کارن جو دکھ ہوتا ہے اس دکھ کا نام کیا ہے, آدھیاتمک دکھ. اب اس دکھ کو دور کرنے کا اپائے کیا ہے دیکھنا. آپ لوگ جینا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے, جینا چاہتے ہو نا, پکا کوئی مرنا نہیں چاہتا, یہ نشچت ہے. دیکھو جیون میں جب تک کیا ہے شریر ہے تو سکھ اور دکھ آپ کو دونوں بھوگنے ہی پڑیں گے, پکا جان لینا. اور جس دن آپ کے جیون کے پونجی ہی سماپت ہو گئی کیا سکھ اتوا دکھ کی, اس دن شریر ہی چھوٹ جائے گا. اب بتاؤ کیا چاہیے, دکھ سکھ سماپت ہو جانا چاہیے کہ رہنا چاہیے بھائی, سماپت ہو جائے. اور جس دن سماپت ہو گیا شریر ہی چھوٹ جائے گا پکا. جس دن بھائی دیکھو کمبل سے اس کے روئیں نکال لو بال نکال لو تو کمبل بچے گا کیا, کمبل کی ستا غائب ہے. کپال گھڑے سے مٹی نکال لو تو گھڑا بچے گا کیا. ایسے آپ کے جیون سے دکھ اور سکھ کو نکال لو تو آپ کا جیون ہی سماپت ہو جائے گا. اس جیون رہنا ہے تو بھیا اتنا تیار بن کے رہنا کہ ہمیں سکھ دکھ. اب کوئی کہے نہیں مہاراج مجھے تو سکھ ہے, سکھ چاہیے, دکھ تو چاہیے نہیں. کئی لوگ ہیں نا کیا چاہیے, سکھ سکھ چاہیے, ہمیں دکھ نہیں چاہیے. اچھے بتاؤ ہم وواہ کرتے ہیں, پتنی کی بنی بنائی گرم روٹی کھاتے ہیں, کپڑے پتنی کے دھلے دھلائے پہنتے ہیں, تو پتنی کا خرچہ پڑوسی اٹھائے گا کیا. اب پتنی چار بات سنائے گی تو کیا کہو گی, کیا نہیں تو ہم سے میٹھا بولا کر, اور کڑوا بولنا ہو تو پڑوسی کو سنا کے آیا کر, یہ ہو سکتا ہے کیا. جس کسی پدارتھ سے سکھ لوگے دھیان دینا اس پدارتھ سے دکھ بھی سہنے کے لیے تیار رہنا, تبھی رہے گا, نہیں تو دکھ نہیں رہے گا پکا. تو تینوں دکھ ہو گئے کہ نہیں دکھ ہو گئے, کون کون سے دکھ, آدھی بھوتک دکھ. اس کے لیے کیا کرنا ہے, سنسار کے بھوتوں سے پرانیوں سے اتنا ہی ویوہار کرو جتنے ویوہار کی آوشکتا ہے. تو سنسار کے جھاڑ جھانکھڑ سے دکھ سے جو بچنا ہے وہ ہم کیا کریں گے, بچ جائیں گے. آدھیاتمک آدھی دیوک دکھ میں کیا کرنا ہے, جتنا دیوتا کے پرکوپ سے دکھ لگتا ہے وہ دکھ نہیں, وہ کیا ہے, سکھ ہی ہے. وہ دیوتا اس روپ میں ہمارے اوپر کرپا ہی کرتا ہے, کرپا کر کے میرا اتھان کرانا چاہتا ہے. دھیان دینا, کرپا کر کے ہمارا کیا کرنا چاہتا ہے, اتھان کرانا چاہتا ہے. جب تک گلاب کی پنکھڑیوں کو کاٹیں گے نہیں ٹہنیوں کو, تب تک گلاب میں وکاس ہے होगा नहीं, तो हमारे जीवन में जब तक कष्ट उठते नहीं तब तक हमारी ख्याति, हमारा यश, हमारी सुगंधि दुनिया में फैलेगी नहीं। और तीसरा दुख कौन सा है? आध्यात्मिक दुख। तो जिस दिन दुख समाप्त हो जाएंगे उस दिन शरीर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर को यदि रखना है तो सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए तैयार रहो। कहो सुख सुख मिले दुख न मिले, ये होने वाला तो है ही नहीं। क्योंकि भाई जिस किसी पदार्थ से सुख लोगे तो उस पदार्थ का दुख भी आपको उठाना ही पड़ेगा। तैयार रहना तभी सुख लेना, नहीं तो सुख न लेना। जैसे हम लोग भाई नहीं सुख लिए है नहीं, कपड़ा अपने आप धुलना है नहीं, रोटी जहां से मिल जाए जैसे मिल जाए वैसे ही खाना है तो हमें कोई डांटने वाला भी नहीं है। लेकिन आप लोग सुख लोगे तो डांट भी तो खाओगे ही खाओगे। इतना कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।